मैं जितेंद्र कुमार, बीए द्वितीय वर्ष, आपके लिए भारत का संविधान एक परिचय द्वारा डॉक्टर दुर्गादास बसु के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। राज्य का उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 के अंतर्गत, किंतु संसद को यह शक्ति है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी अनुच्छेद 231 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित होता है। उच्च न्यायालय का गठन प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को निम्नलिखित को नियुक्त करने की शक्ति है। उच्च न्यायालय के बकाया कार्य को निपटाने के लिए दो वर्ष से अनधिक की अस्थायी अवधि के लिए अपर न्यायाधीश। जब किसी उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश तब तक पद धारण करता है जब तक अस्थायी न्यायाधीश अपना पदभार फिर से नहीं संभाल लेता है, किंतु अपर या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु के पश्चात पद धारण नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति करने में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगा। परामर्श की भागीदारी की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया मिलजुल कर परामर्श करने की समेकित प्रक्रिया है, जिससे कि नियुक्ति के लिए उपलब्ध व्यक्तियों में से सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जा सके और संविधान के सभी कृतकार्यों को या कर्तव्य संवैधानिक उद्देश्य का हित साधन करते हुए प्राथमिक रूप से सहमत विनिश्चय पर पहुंचने के लिए संयुक्त रूप से ही करना चाहिए, जिससे कि प्रमुखता का प्रश्न ही ना उठे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्थापना सदैव ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा ही की जानी चाहिए। संवैधानिक कृतकार्यों द्वारा विरोधात्मक मत दिए जाने की स्थिति में न्यायपालिका के मत को, जिसका प्रतीक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का वह मत होगा जिसे वह उच्चतम न्यायालय के उन दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से बनाएगा जो उस राज्य से आए हों, प्रमुखता दी जाएगी। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकेगी जब तक कि वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के मत के अनुरूप ना हो। केवल अपवादिक मामलों में ही, जिसके लिए सबल तर्कपूर्ण कारण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को यह उपदर्शित करते हुए बताया जाएगा कि संस्तुत व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तभी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा संस्तुत व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। तथापि यदि कथित कारण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को और उच्चतम न्यायालय के उन अन्य न्यायाधीशों को स्वीकार्य नहीं है जिनसे उसके द्वारा परामर्श दिया है, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा फिर से वही संस्तुति किए जाने पर एक स्वस्थ परिपाटी के रूप में नियुक्ति कर दी जानी चाहिए। तत्पश्चात भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उसके साथी न्यायाधीशों के मध्य परामर्श की बात को उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट कर दिया, किंतु उपयुक्त सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स केस के पुनर्विलोकन या पुनर्विचार के रूप में नहीं। उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श से राय बनाने में बहुत से न्यायाधीशों से परामर्श विवक्षित होता है, मात्र उसी की ही राय से परामर्श गठित नहीं होता। केवल एक ऐसी मंडली को ही, जिसमें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे, जैसा कि उपयुक्त सेकेंड जजेज मामले में कथित था, संस्तुति करना चाहिए। विनिश्चय करने में इस मंडली को चाहिए कि वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की राय, जो सबसे अधिक वजन दिए जाने की हकदार होगी, उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की राय जिनसे परामर्श लिया जाए, और उच्चतम न्यायालय के उन अन्य न्यायाधीशों की राय जो उस उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित है पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय ने उन न्यायाधीशों की भी राय ली जाएगी जो उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हैं। इस तथ्य के बावजूद कि वह उच्च न्यायालय उनका मूल उच्च न्यायालय नहीं है और वे यहाँ स्थानांतरित किए गए थे, ये सारी राय निम्नलिखित रूप में व्यक्त की जानी चाहिए और भारत सरकार को उक्त मंडली की संस्तुति के साथ प्रेषित की जानी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा पूर्व कथित परामर्श प्रक्रिया के इन संयमों और अपेक्षाओं के अनुपालन के बिना की गई संस्तुतियां भारत सरकार द्वारा अबद्ध कर नहीं होंगी। इसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। यदि पूर्व कथित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाता या नियुक्त व्यक्ति अर्हत नहीं है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करेगा। प्रत्येक न्यायाधीश अस्थायी, अपर या कार्यकारी इससे पहले ही निम्न रीति से अपना पद त्याग कर सकेगा। राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर या किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित किए जाने पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा क्षमावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने का ढंग वही होगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है। दोनों ही सदाचरण के दौरान पद धारण करेंगे अनुच्छेद 217 क्लॉज ए के अंतर्गत। हटाने की इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। यह प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है। वेतन आदि। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 26,000 रुपये प्रति मास और मुख्य न्यायमूर्ति को 30,000 रुपये प्रति मास वेतन मिलता है। वह ऐसे भत्तों का हकदार है और उसे छुट्टी और पेंशन की बाबत ऐसे अधिकार हैं जो संसद समय समय पर अवधारित करे। ऐसे भत्तों और अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात संसद द्वारा उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 221 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं। संविधान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए जो अर्हताएं अधिकथित है वे ये हैं। उसे भारत का नागरिक और 62 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो या किसी उच्च न्यायालय का या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो अनुच्छेद 217 क्लॉज 2 के अंतर्गत। न्यायाधीशों की स्वाधीनता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही संविधान में बहुत से उपबंध बनाकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वाधीनता कायम रखी गई है। यह अधिकथित करके कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रत्येक सदन द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित समावेदन पर जो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हो अनुच्छेद 218 के अंतर्गत। यह उपबंध करके कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बाबत व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होगा अनुच्छेद 202 क्लॉज 3 के घ के अंतर्गत। संविधान में यह विनिर्दिष्ट करके कि न्यायाधीशों को संदेह वेतन और भत्ते या अनुपस्थिति या पेंशन की बाबत उनके अधिकार संसद द्वारा उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं किए जाएंगे अनुच्छेद 221 के अंतर्गत। वित्तीय आपात की उद्घोषणा होने पर ही ऐसा हो सकेगा अनुच्छेद 360 क्लॉज 4 के ख के अंतर्गत। यह अधिकथित करके कि उच्च न्यायालय या अस्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवा भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 220 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों पर संघ का नियंत्रण। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी ने संविधान सभा में न्यायपालिका की स्वाधीनता को सुनिश्चित करते हुए सिफारिश की थी कि संविधान ने कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उच्च न्यायालय को संघ के नियंत्रण में रखा है, जिससे कि वे प्रांतीय राजनीति की परिधि से बाहर रहें। इसलिए यद्यपि उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका के शीर्ष पर है, फिर भी वह राज्य सरकार से उतना ही विलग है जितना किसी अमेरिकी राज्य का उच्च न्यायालय, जिसे वहाँ राज्य का उच्चतम न्यायालय कहते हैं। भारत में उच्च न्यायालय पर संघ का नियंत्रण निम्नलिखित रूप से रखा जाता है। नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय से दूसरे को अंतरण अनुच्छेद 222 और हटाया जाना अनुच्छेद 217 क्लॉज ए परंतु ख और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में आयु का निर्धारण अनुच्छेद 217 क्लॉज 3 स्थानांतरण। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की शक्ति संघीय सरकार द्वारा उच्च न्यायालय पर नियंत्रण की पद्धति नहीं रह गई, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्देश में एक प्रक्रिया विहित कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने राय दी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय लेनी चाहिए जहां से प्रस्तावित स्थानांतरण किया जाना है, और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी जहां स्थानांतरण किया जाना है, जैसा कि सेकेंड जजेज केस में 1993 में कहा गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के उन एक या अधिक न्यायाधीशों की राय पर विचार करना चाहिए जो ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने की स्थिति में हो, जो इस बात को विनिश्चित करने की प्रक्रिया में सहायक हो कि कोई प्रस्तावित स्थानांतरण किया जाना चाहिए कि नहीं। ये राय लिखित दी जानी चाहिए और उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा विचार में लिया जाना चाहिए। इन मतों और साथ में चारों वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मतों को स्थानांतरण के प्रस्ताव के साथ भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए। जो बातें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर लागू होंगी, वही बातें एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किए जाने में लागू होंगे, सिवाय इसके कि इस मामले में एक या अधिक जानकार न्यायाधीशों की रायों को ही विचार में लिया जाना चाहिए। इन बातों को और उच्च न्यायालय के उस मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की प्रतिक्रिया को शामिल करके जिसका स्थानांतरण प्रस्तावित है, मंडली भारत का मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्ताव पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व विचार में लिए जाने के लिए रखा जाना चाहिए। जब तक स्थानांतरण का विनिश्चय उपयुक्त ढंग से न लिया गया हो, वह विनिश्चायक और भारत सरकार पर अवध कर नहीं होगा और न्यायिक पुनर्विलोकन के अध्ययधीन होगा। उच्च न्यायालयों की संरचना और गठन और दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति तथा उच्च न्यायालय की अधिकारिता या का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करने या किसी संघ राज्य क्षेत्र को उसकी अधिकारिता से अपवर्जित करने की शक्ति आदि सभी संघ की संसद की अनन्य शक्तियां हैं। प्रस्तुत संदर्भ में यह बता देना उचित होगा कि मूल संविधान में पश्चातवर्ती संसाधनों द्वारा कुछ उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तुलना में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वाधीनता पर प्रभाव डालते हैं। 1956 में विद्यमान अनुच्छेद 224 के स्थान पर नया अनुच्छेद 224 लाया गया। इसमें यह उपबंध किया कि उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि के कारण अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकेगी। इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक न्यायाधीश 2 वर्ष तक पद धारण करता है, किंतु उक्त अवधि की समाप्ति के पहले उसे अस्थायी किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के लिए इसके समान कोई उपबंध नहीं है। यह उपबंध उच्च न्यायालयों के लिए इसलिए बनाया गया कि कार्य के बकाया की समस्या थी और यह आशा थी कि निकट भविष्य में यह समस्या समाप्त हो जाएगी। अब बकाया की समस्या अस्थायी हो गई है और इसके लिए अनेकों अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जा रहे हैं। अतः अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की तत्कालीन व्यवस्था को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस युक्ति का दोष यह है कि अपर न्यायाधीश परिवीक्षाधीन तो होता ही है, वह मुख्य न्यायमूर्ति और सरकार के दबाव में भी होता है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि 2 वर्ष बाद उसे स्थायी किया जाएगा या नहीं। जहाँ तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यायिक शक्ति का प्रश्न है, प्रत्येक न्यायाधीश पीठ के दूसरे सदस्यों के समान पंक्ति में ही रहता है। यदि उसके ज्ञान, चेतना या प्रज्ञा के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति या पीठ के किसी अन्य ज्येष्ठ सदस्य से उसे सहमत नहीं होना चाहिए, तो न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी सिद्धांत के अनुसार यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सहमत हो। इसी प्रकार उससे यह आशा नहीं है कि यदि मामले में गुनागुन के आधार पर सरकार के विरुद्ध निर्णय देने की अपेक्षा हो तो वह ना दे। 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात अपनी नौकरी खो देने का भय अपर न्यायाधीश पर प्रचंड रूप से दबाव का काम करता है। इसी प्रकार 1963 में 217 में खंड 3 अंतः स्थापित किया गया था, जिससे राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई व्यक्ति प्रश्न उपस्थित करता है, तो राष्ट्रपति भारत के न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु निर्धारित करेगा। 1963 के उसी संशोधन द्वारा 15वां संशोधन अनुच्छेद 229 में खंड 2 का अंतः स्थापित किया गया है, जिसमें यह अधिकथित किया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में इसी प्रकार के प्रश्न का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्थिति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से अनावश्यक रूप से नीची हो गई है। यही नहीं कि वह अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों से भी नीची हो गई है, क्योंकि यदि अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी की आयु का अवधारण प्रशासन द्वारा होता है तो वह उस पर न्यायालय में आक्षेप कर सकता है, किंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में संविधान ने उसे अंतिम कर दिया है। प्रकटतः ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि क्यों अनुच्छेद 124 के खंड 2 क के समान कोई उपबंध अनुच्छेद 217 में प्रश्नगत खंड 3 के स्थान पर अंतर्विष्ट नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर नियंत्रण का एक उपकरण है अनुच्छेद 222 क्लॉज 1, जिसमें उनके एक उच्च न्यायालय से दूसरे को स्थानांतरण का उपबंध है। 1994 में इसका प्रयोग करके एक बार में ही 50 न्यायाधीशों को स्थानांतरित किया गया। राष्ट्रपति की इस शक्ति का प्रयोग दंड देने के लिए नहीं किया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर ही कर सकेगा, संबंध न्यायाधीश की सहमति आवश्यक नहीं है। उच्च न्यायालय की राज क्षेत्रीय अधिकारिता, जहां संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध करती है, अनुच्छेद 231 के अंतर्गत या किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, उसे छोड़कर राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता राज्य की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं तक होती है। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि संसद ने कुछ उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का विस्तार निकटतम संघ राज्य क्षेत्रों पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया है। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार अंडमान और निकोबार द्वीप पर है, केरल उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार लक्षद्वीप पर है। उच्च न्यायालय की समान अधिकारिता, संविधान उच्च न्यायालय की साधारण अधिकारिता के संबंध में कोई उपबंध नहीं करता, किंतु यह घोषित करता है कि संविधान के आरंभ पर विद्यमान उनकी अधिकारिता बनी रहेगी। इसमें यह सुधार किया गया है कि संविधान के प्रारंभ के पहले राजस्व के मामले में अधिकारिता पर जो निर्बंधन थे वे आगे नहीं लागू होंगे। अनुच्छेद 225 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की विद्यमान अधिकारिता लेटर्स पेंटेड तथा केंद्र और राज्य अधिनियमों द्वारा शासित होती है, विशेष रूप से उनकी सिविल और दंडिक अधिकारिता, सिविल और दंडिक प्रक्रिया संहिताओं द्वारा शासित होती है। आरंभिक कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के अधीन प्रेसिडेंसी नगरों के उच्च न्यायालयों की सिविल और दंडिक प्रायोजनों में आरंभिक अधिकारिता है। यह अधिकारिता उन प्रेसिडेंसी नगरों में उद्भूत होने वाले मामलों पर है। दंड प्रक्रिया 1973 ने उच्च न्यायालयों की दंडिक अधिकारिता को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। उसी क्षेत्र में सिविल मामलों के विचारण के लिए नगर सिविल न्यायालयों की स्थापना हुई है, किंतु उच्च न्यायालयों की आरंभिक सिविल अधिकारिता पुनः उत्सादित नहीं हुई है। कुछ उच्च मूल्य की कार्यवाहियों की बाबत उसे बनाए रखा गया है। अपीली उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता सिविल और दंडिक दोनों मामलों में है। सिविल पक्ष में उच्च न्यायालय को की जाने वाली अपील या तो प्रथम अपील होती है या दूसरी, जिला न्यायाधीशों और अन्य अधीनस्थ न्यायाधीशों से ऊंचे मूल्य वाले वादों में तथ्य और विधि दोनों के प्रश्नों पर अपील सीधे उच्च न्यायालय को होती है। जहां उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कोई न्यायालय अर्थात जिला न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायाधीश किसी निचले न्यायाधीश न्यायालय के निश्चय से अपील सुनकर उसका अवधारण करता है, वहां ऐसे निचले अपीली न्यायालय के निश्चय से उच्च न्यायालय को अपील होती है, किंतु यह अपील केवल विधि और प्रक्रिया के प्रश्न पर होगी, तथ्यों के प्रश्न पर नहीं। धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेंटेड के अधीन अपील का उपबंध है। ये अपीलें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निश्चय से उच्च न्यायालय के अपील पक्ष को होती हैं, चाहे ऐसा निश्चय आरंभिक अधिकारिता के प्रयोग में दिया गया हो या अपीली अधिकारिता के। उच्च न्यायालय की दंडिक अपीली अधिकारिता भी ऐसी ही जटिल है। इसमें सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के निश्चय से अपील होती है, जहां कारावास का दंडादेश 7 वर्ष से अधिक का है। सहायक सेशन न्यायाधीश या महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के निश्चयों से ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों में अपीलें होती हैं जो तुच्छ मामले नहीं हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374, 376, 376(6) के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति होगी जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। सैन्य अधिकरणों को छोड़कर अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वह अधीक्षण की शक्ति बहुत व्यापक है। इसका विस्तार राज्य के भीतर सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर है, चाहे ऐसे न्यायालय या अधिकरण उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता के अधीन हो या नहीं। इसके अतिरिक्त इस अधीक्षण की शक्ति में घोर अन्याय या अधिकारिता के प्रयोग, दुरुपयोग या अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार या अभिलेख में देखने से ही विधि की प्रकट भूल की स्थिति में या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण या प्राधिकार या विवेकाधिकार का मनमाना या अनुचित प्रयोग या ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना जो अनुचित है या किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं है या प्रक्रिया में सुस्पष्ट या प्रत्यक्षतः भूल की दशा में पुनरीक्षण की अधिकारिता भी होती है, चाहे ऐसे अधिकरण के उद्देश्यों के विरुद्ध अपील या पुनर्निरीक्षण अन्यथा उपलब्ध हो या नहीं। प्रशासनिक अधिकरणों पर अधिकारिता। सरकारी गतिविधियों में विस्तार के कारण और प्रशासन द्वारा किए जाने वाले काम की जटिल प्रवृत्ति के कारण बहुत से आधुनिक कानूनों से प्रशासनिक निकायों को ऐसी विधि के प्रशासन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों और न्यायिक कल्प विवादों का निश्चय करने की शक्ति दी गई है। इसका कारण यह है कि या तो सामान्य न्यायालयों को इन नए विषयों या विवादों को जो तकनीकी प्रकृति के हैं निश्चय करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि उन पर कार्यभार पहले से ही अधिक है, या इनका विनिश्चय ऐसे व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है जिन्हें उससे संबंधित अधिनियम के कार्यकरण का विशेष ज्ञान है। इस प्रकार भारत में मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन परिवहन प्राधिकारियों जैसे प्रशासनिक अधिकारियों पर राज्य के भाटक अधिनियमों के अधीन भाटक नियंत्रक को न्यायिक कल्प शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अधिकरण हैं जो न्यायिक प्रशासन के अंग नहीं हैं, किंतु उन्हें न्यायालय के जैसी सभी साज सज्जा दी गई है। यह होते हुए भी वे सही अर्थ में न्यायालय नहीं हैं, क्योंकि वे एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। इन सभी अधिकरणों का एक समान लक्षण है, अर्थात वे नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का अवधारण करते हैं और उनके विनिश्चय नागरिकों पर आबद्ध कर हैं। इन अधिकरणों के विनिश्चयों का पक्षकारों पर न्यायालय द्वारा अंगीकृत प्रक्रिया का ठीक ठाक अनुसरण नहीं करते हैं, इसलिए इस बात की आवश्यकता उत्पन्न होती है कि उन्हें वरिष्ठ न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रखा जाए, जिससे वे अपनी अधिकारिता की उच्च सीमाओं के भीतर रहें और घोर अन्याय ना कर पाएं। इंग्लैंड में उच्च न्यायालय परमाधिकार रिट निकालने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायिक कल्प विनिश्चयों का न्यायिक पुनर्विलोकन करते हैं। भारत के संविधान में ऐसे अनेकों उपबंध हैं जो इन अधिकरणों को हमारे देश के वरिष्ठ न्यायालयों अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रखते हैं। यदि अधिकरण ऐसा उपदेश आदेश करता है जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का अतिलंघन करता है, तो वह उस निश्चय को विखंडित करने के लिए उत्प्रेषण की रीट के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को या अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों को आवेदन कर सकता है। मूल अधिकार का अतिलंघन न होने पर भी उच्च न्यायालय उत्प्रेषण की रिट प्रदान करने के लिए सक्षम है। यदि अधिकरण अधिकारिता के बिना कोई कार्य करता है या उस अधिकरण का गठन करने वाले कानून द्वारा दी गई अधिकारिता के बाहर कोई कार्य करता है या कोई ऐसे आदेश देता है जो नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल है या अभिलेख से प्रकट होने वाली कोई विधिक भूल है। प्रत्येक न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति के अतिरिक्त उसकी अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाले सभी अधिकरणों पर साधारण अधीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 227 के अधीन है और इस अधीक्षण को निर्वचन करके प्रशासनिक और न्यायिक दोनों माना गया है। अतः जहां उत्प्रेषण की रिट उपलब्ध नहीं है किंतु स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ है या होने वाला है, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के अधीन हस्तक्षेप कर सकेगा और अधिकरण के आदेश को विखंडित कर सकेगा। इन सब के ऊपर उच्चतम न्यायालय भारत में किसी भी अधिकरण के अवधारण के विरुद्ध अपील करने की विशेष इजाज़त अनुच्छेद 136 के अधीन दे सकता है। जहां कभी उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करते हुए असाधारण परिस्थितियां हो, वहां वह ऐसा करता है। मोटे तौर से उच्चतम न्यायालय किसी अधिकरण पर अनुच्छेद 136 की शक्तियों का प्रयोग करेगा जहां अधिकरण के विरुद्ध उत्प्रेषण की रिट दी जा सकती है। उदाहरण के लिए जहां अधिकरण ने अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य किया है या उसे विनिर्दिष्ट प्रश्न को ऐसी रीति से आधारित किया है जिससे अन्याय होगा, या ऐसी प्रक्रिया अपनाई है जो नैसर्गिक न्याय के स्वस्थापित नियमों के विपरीत है। उच्चतम न्यायालय इस असाधारण शक्ति का प्रयोग बहुत कम मामलों में और आपवादिक परिस्थितियों में करेगा, और जहाँ तक हो सके अपील न्यायालय के रूप में ऐसे अधिकरणों के निश्चय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता। उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता है। इस अधिकारिता का विस्तार निचले न्यायालयों के और अधिकरणों के अतिरिक्त राज्य या ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति पर है जिसे राज्य का प्राधिकार सौंपा गया है। इस अधिकारिता की विशेषता यह है कि संविधान द्वारा प्रदत्त होने के कारण इसे संविधान के संशोधन से ही छीना जा सकता है या कम किया जा सकता है। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय की रिट निकालने की अधिकारिता अधिक विस्तारवान है। उच्चतम न्यायालय तभी रिट निकाल सकता है जब किसी मूल अधिकार का अतिलंघन हुआ है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार के मामले में तो रिट निकाल ही सकता है, और वह सामान्य विधिक अधिकार के अतिलंघन के मामले में भी रिट निकाल सकता है यदि सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार ऐसे मामलों से रिट ही उचित उपचार है। लोकहितवाद पिल। इंग्लिश और अमेरिकन विनिश्चयों का अनुसरण करते हुए हमारे उच्चतम न्यायालय ने एक वर्ग के मुकदमे में, जिसे लोकहितवाद या पिल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात जहां जनसाधारण किसी अधिकार की रक्षा या लोक कर्तव्य के लागू होने में रुचि रखते हैं, शपथ पत्र पर सुने जाने का अधिकार या उसी समान बातों से संबंधित कठोर नियमों में अपवाद ग्रहण किया है। इस परिपाटी का उच्च न्यायालयों ने भी अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी अधिकारिता में अनुसरण करना आरंभ कर दिया है, और उच्चतम न्यायालय ने इस परिपाटी को यह संप्रेक्षण करते हुए अनुमोदित भी कर दिया है कि जहां कार्यपालिका की किसी मनमानी और अनुचित कार्रवाई से लोकहित को क्षति पहुंचती है, वहां रिट जारी करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य होगा। न्यायालय को अपना यह समाधान करना ही चाहिए कि लोकहितवाद लाने वाला व्यक्ति लोक कल्याण के लिए सद्भाव से वाद लाया है। यह किसी अन्य पक्ष का या याचिका दायर करने वाले पक्षकार के निजी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मात्र छद्म वेश ना हो। न्यायालय वादकारी द्वारा पूर्व में किए गए लोक सेवा के प्रमाण की जांच कर सकता है। एक अधिवक्ता ने ना कि केवल वह इप्सित करते हुए राज्य या उसके अभिकरणों के विरुद्ध याचिका दायर किया कि उसके कर्मचारियों द्वारा किए गए बलात्संग की शिकार स्त्री को प्रतिकर दिया जाए, बल्कि उसने रेलवे स्टेशनों पर समाज विरोधी या आपराधिक क्रियाकलापों के उन्मूलन को शामिल करते हुए कई अन्य राहतें भी चाही थीं। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह याचिका लोकहितवाद के स्वरूप की थी, और ऐसी याचिका को कोई भी अधिवक्ता दायर कर सकता है, क्योंकि उसके लिए किसी व्यक्तिगत क्षति या हानि का होना आवश्यक तत्व नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। उच्च न्यायालय को राज्य की न्यायपालिका के शीर्ष पर होने के नाते कुछ विषयों की बाबत राज्य की अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण है। यह अपीली और अधीक्षण अधिकारिता के अतिरिक्त है। अधीनस्थ न्यायालयों में आते हैं जिला न्यायाधीश, नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश, महानगर मजिस्ट्रेट और राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्य। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के ऊपर नियंत्रण का प्रयोग निम्न रीति से किया जाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना और प्रोन्नति के मामले में राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। अनुच्छेद 234 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्तियां करता है। अनुच्छेद 235 के अंतर्गत जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना तथा स्थानांतरण, अनुशासनिक नियंत्रण जिसमें जांच, निलंबन और दंड और अनिवार्य सेवानिवृत्ति है, उच्च न्यायालय में निहित होगा। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करना उच्च न्यायालय का सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। 42वां, 43वां और 44वां संविधान संशोधन। संविधान के अधीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनेक प्रकार से काट छांट दिया गया था। इस पर हम पहले ही अध्याय 22 के अंतर्गत अंत में उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निर्देश कर चुके हैं, किंतु संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नए अनुच्छेद 226 क और 228 क का 43वें संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा लोप कर दिया गया है और आरंभ की स्थिति वापस आ गई है, किंतु इस संदर्भ में अनुच्छेद 323 का, अनुच्छेद 323 ख का उल्लेख करना होगा। संसद ने अनुच्छेद 323 क को क्रियान्वित करते हुए प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया है, जिसके अधीन केंद्र सरकार ने संघ की सेवाओं के बाबत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों को संघ की लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में भर्ती और अन्य सेवा संबंधी विषयों के बारे में वाद ग्रहण करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी, ना तो आरंभिक और ना अपील। उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन ऐसे अधिकरणों से विशेष इजाजत देकर अपील सुनने की अधिकारिता यथावत है, परंतु तत्पश्चात स्थिति बदल गई, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 323 क खंड 2 घ और अनुच्छेद 323 ख खंड 3 घ तथा उनके अनुसरण में अधिनियमित सभी अधिनियमों में अधिकारिता के उपवर्जन खंडों को इस सीमा तक असंवैधानिक घोषित कर दिया जहां तक वे अनुच्छेद 226, 227 और 32 के अधीन उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को अपवर्जित करते थे।